यूनाइटेड किंगडम में 3 दिवसीय G7 शिखर वार्ता अब समाप्त हो गई है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सभी प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधि नेताओं के आपसी सद्भाव की प्रशंसा की है। ये सभी विश्व नेता 2 साल के अंतराल के बाद मिल रहे थे। ग्रुप ऑफ 7 की इस शिखर वार्ता के आखिरी दिन के केंद्र में जलवायु परिवर्तन रहा। ब्रॉडकास्टर और प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो ने एकत्रित हुए सभी नेताओं को वीडियो द्वारा संबोधित किया।
इफ द 7 नेशंस यू रिप्रेजेंट मेक हैविंग ग्लोबल एमिशंस दिस डेकेड व्हेरेवर दे आर एमिटेड योर टॉप प्रायोरिटी, वी कैन शिफ्ट इन टाइम। If we support the less wealthy and those that supply us with goods we ourselves no longer manufacture to grow sustainably, then our world will become more equal. If the wealthiest fund and support developing nations on their path to net zero, then our global transition will be a just one. If we achieve this, we won't just have stopped climate change, we will have built a cleaner, fairer world with sustainable economies and a biosphere that can support civilizations for generations to come. The global leadership of this decade could create a legacy that will last millennia.
हालांकि सभी G7 राजनेताओं ने सहमति जाहिर की कि कम आय वाले देशों में कार्बन एमिशन कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पहले से तय हुई योजना के मुताबिक साल के पीछे $130 बिलियन दिए जाने चाहिए, पर दो ही देशों ने अधिक योगदान के पक्के वायदे किए। सभी देशों ने संयुक्त रूप से कम आय वाले देशों के लिए 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन का योगदान देने का निश्चय किया और साथ ही चीन के गैर बाजारी आर्थिक आचरण और मानवाधिकार उल्लंघनों को चुनौती देने का फैसला भी लिया गया। पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात की आश्वस्ति दी है कि G7 चीन विरोधी नहीं है।
Et donc, je vais être très clair, le G7 n'est pas un club hostile à la Chine. C'est un ensemble de démocraties qui entend
Let me be clear, the G7 is not a club which is hostile to China. It's a group of democracies that wants to work on a number of global issues on which China is willing to work with us, whether it be climate, whether it be a real recommitment to the rules of global trade, whether it be international development and the question of African debt, and so on. It is an international competitor, from whom we expect the full respect of all the rules we collectively and voluntarily submitted ourselves to, those of the World Trade Organization. And it's also a power with which we have disagreements when it comes to forced labor and human rights.
Une puissance avec laquelle nous avons des désaccords que nous assumons quand il s'agit du travail forcé ou des droits de l'homme.
कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि कनाडा कोरोना वायरस महामारी समाप्त करने की दिशा में कम आय वाले देशों को 100 मिलियन वैक्सीन की मदद पहुंचाएगा।
To truly beat COVID-19 anywhere, we have to beat it everywhere. That's something we've understood right from the start of this pandemic. That's why Canada has to date contributed $2.5 billion to help address this crisis globally. We are one of only 4 countries that has already paid our fair share to the ACT Accelerator, which supports global access to vaccines, tests, and treatments. But this pandemic isn't over yet. So through the G7, we're stepping up once again. Today, the G7 announced that our collective commitments will result in over 2 billion doses being shared with the rest of the world. Canada's portion is 100 million doses.
ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि शिखर वार्ता में चर्चाएं केवल कोरोना वायरस की महामारी से निपटने तक ही सीमित नहीं थीं।
We look towards the global recovery, a great global recovery our countries have committed to lead, and we were clear that we all need to build back better in a way that delivers for all our people and for the people of the world. That means preventing a pandemic like this from ever happening again, apart from anything else, by establishing a global pandemic radar which will spot new diseases before they get the chance to spread. It means ensuring that our future prosperity benefits all the citizens of our countries and indeed all the citizens of the world.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना था कि विश्व संघर्षों से निपटने की जिम्मेदारी विश्व के सभी लोकतंत्रों की होनी चाहिए ताकि सभी के लिए एक सुचारू व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों पर 15% वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर लगाने का निर्णय महत्वपूर्ण था।
Too many corporations have been engaged in what are essentially tax havens, deciding that they would pay considerably less in other environs around the world. But this is going to make sure there's a minimum tax, and I'm going to move on this at home as well. Minimum tax for corporations to pay for the profits they make.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इस शिखर वार्ता में एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर सम्मिलित हुए थे। उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण मौका था।
It is a gathering of like-minded countries, countries that understand that the world order that has favored freedom for so long has been so beneficial to so much of the world, to usher in a period of peace and prosperity like the world has never seen before.
इसी बीच एक्सटिंक्शन रिबेलियन क्लाइमेट एक्टिविज्म ग्रुप की G7 शिखर वार्ता में हुई चर्चाओं पर अपनी शंकाएं हैं। वैज्ञानिक और जलवायु कार्यकर्ता पॉल विटली का कहना है कि वैश्विक राजनेताओं ने सालों तक जलवायु रक्षण पर ढुलमुल नीति अपनाई है और अब उनके पास इस दिशा में सुधार करने के लिए साथ काम करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है।
Basically, they need to stop thinking about how they're going to turn this emergency into a money-making opportunity for their chums, into how they're going to protect the people that actually voted for them. And really, they've had 25 years of floundering around, waiting like penguins on the edge of the water, waiting to see who was going to be the first one to dive in. Well, it's too late. They've all got to dive in together.
स्वदेश वापसी से पहले प्रधानमंत्री मॉरिसन लंदन में ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वार्ता बैठकें करेंगे। SBS न्यूज से एलन ली की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए पेश किया है वृशाली जैन ने।